ओम शांति। हमारे माउंट आबू की तरफ से परम श्रद्धेय शिलो दीदी जी भी पहुंची हुई है और हम सभी मिलकर आज इस प्रांगण में कहो, इस हॉल में कहो, इसीलिए बैठे हैं। अभी का जो सेशन चलेगा हमारा, उस सेशन के साथ जो टॉपिक है समाज सेवा एवं समर्पण भाव, तो आइए इसके साथ जुड़ने के लिए और लास्ट या समापन समारोह कहेंगे। और इस समापन समारोह के लिए आप सभी जो जहां कहीं भी अभी है, थोड़े समय के लिए फ्रेश होने के लिए गए हो, वो सभी पुनः इस हॉल में एकत्रित होंगे और इस कार्यक्रम का पूरा पूरा लाभ लेंगे। ओम शांति। समृद्ध एवं सशक्त समाज की कुंजी आध्यात्मिकता, इस विषय के साथ जो हम तीन दिन की इतनी सुंदर हम सम्मेलन के साथ जुड़े हुए हैं, तो इस कार्यक्रम में आप सभी सेवा प्रेमी, जन प्रेमी, आध्यात्म प्रेमी, समाज सेवियों का पुनः दिल से स्वागत, अभिनंदन अभिनंदन। प्रभु के घर में आप पधारे, प्रभु के घर में आप पधारे, आपका परिवार है या आपका ही परिवार है। वरदानों के इस पावन भूमि पर आप सभी का स्वागत बारंबार है, आप सभी का स्वागत बारंबार है। आज के विषय के साथ हम सभी यहाँ पर जुड़े रहेंगे, समाज सेवा एवं समर्पण भाव। सेवा के साथ जुड़ा हुआ है ये हमारा समर्पण भाव। यहाँ तीन दिन की इस कार्यशाला में, जिसको हम राज्य सत्र कहते हैं, बहुत ही सुंदर प्रेरणाएं आप सबको मिली है उस परम सत्ता, परम ज्योति, परमात्मा से किस तरह से हम जुड़े रहेंगे, ताकि हमारे जीवन में निस्वार्थ रूप से समर्पण भाव के साथ कार्य करने की एक ऊर्जा आ जाएगी। तो समर्पण भाव जब अपने आप के अंदर में हम रखते हैं, तो सेवा में सफलता एवं पुण्य का खाता बढ़ता जाता है। और हमारी सोशल सेवा के साथ हम जुड़े हुए सभी में यही एक भाव भावनाएं है, और बहुत प्यार और नम्रता के साथ आप सभी सेवाएं तो कर ही रहे। इसी इस तीन दिन में आपके चेहरे की जो हंसी व मुस्कान हम सबको बयां कर रही है कि ज्ञान सरोवर की शीतलता ने आप सभी के तन मन की थकान को दूर कर लिया है ना। इतने घंटों से आप सभी बैठे हुए, तो भी आपका जो चेहरा है बहुत ही कैसे लग रहा, हाँ, हंसी से आज मुस्कुराता हुआ। तो इसलिए ये बयां कर रहा है कि ज्ञान सरोवर की जब आप अपने मन को शांत चित कर लेते हैं, शुद्ध बनाते हैं, तो निश्चित रूप से बड़े बड़े कार्यों में भी आप अपने जीवन में समर्थ बन सकेंगे, और उस कार्य के साथ आप अपने जीवन में सफलता को सहज रीति से प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जाते जाते एक बात हम सभी सोशल सेवा भावियों को ध्यान में रखना होगा कि वकीलों से अगर गलती हो जाती है तो समय के साथ फाइल में दब जाती है, इंजीनियर से भी अगर गलती हो जाती है तो समय के साथ हम देखते हैं दीवारों में दब जाती है, और डॉक्टरों से भी अगर गलती, अनजाने उन्हों की तो आज प्रतिज्ञा होती, फिर भी अगर गलती हो जाती है तो वो मरीजों के साथ ही दब जाती। लेकिन हम सोशल सेवा भावी अगर कार्य के साथ अगर कुछ गलती कर ले, तो उस गलती का हम देखते हैं परिणाम सारे समाज में हो जाता है, और कहा जाता है समाज की इकाई हर एक हम सब है, और एक एक से ही यह समाज बनता है, इसीलिए हम सबकी जिम्मेवारी है, हम सबकी बहुत बड़ी जवाबदारी है। उस परम सत्ता निराकार परमात्मा ने हम सबको सुनाई कि जो भी हम कार्य करें, जो भी कार्य करें उसको पहले सोचे, फिर उसके साथ उसके निर्णय के साथ आज हम अपने आप के अंदर में आगे बढ़े। लेकिन उसके लिए चाहिए अंदर में एक इनर पावर, आत्मिक शक्ति की जागृति, जिसके लिए आपको यहाँ पर बार बार एक मेडिटेशन के साथ जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो मेडिटेशन रांचो वो एक शक्ति है, जिस शक्ति से ये सारी प्राप्तियां सहज रूप से अपने जीवन में आप प्राप्त कर ही रहे हो, और भी इसके साथ यहाँ से जाने के बाद आज अपने अपने स्थानों पर इस ब्रह्मा कुमारी केंद्र के साथ अगर जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन की जो कार्यशीला है या कार्य की जो प्रगति का आज अग्रसर होना आपके लिए बहुत 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 सहज हो जाएगा। तो आज के इस समापन आज सत्र के साथ आप सबको हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आज इतना ये जो सुंदर मंच, उस मंच को हम सुशोभित करने के लिए आज हम सबके बीच विशेष महानुभाव और विशेष वक्ता और हमारे विद्यालय के तरफ से आई हुई हमारी आदरणीय सम्माननीय दीदियां, तो उन सबको मैं इस आह्वान के साथ निमंत्रण देना चाहती हूँ कि आप आइए और आपके द्वारा आज का ये जो मंच है उसको आप सुशोभित कर लीजिए। सबसे पहले मैं परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, सम्माननीय, हम सबकी अति स्नेही हमारी सीलू दीदी जी, आप तालियों से स्वागत करते रहेंगे। हमारी सीलू दीदी जी आज इस मंच पर मंचासीन होंगी, उसके साथ साथ आज के जो है चेयरपर्सन हमारे परम आदरणीय, परम श्रद्धेय प्रेम भाई जी गुलबर्गा, आपको भी हम इस मंच पर आने का आह्वान कर रहे हैं। आइए और इस मंच की शोभा बढ़ाई। हमारी दीदी मंच पर आ रही है, तालियों के गड़गड़ाहट के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं। आज के विशेष अतिथि के रूप में गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे आदरणीय कृष्णा भाई जी गंभीर, आप करनाल हरियाणा से हैं, आपको भी हम आमंत्रित करते हैं, आप भी मंच के ऊपर में मंचासीन जिसका शोभा बढ़ाइए। फिर उसके साथ भ्राता आदरणीय लक्ष्मीचंद भाई जी रुड़की, आपको भी आमंत्रण है, आप भी आइए और मंच को आज सुशोभित कर लीजिए। आज मेडिटेशन के लिए हमारी प्यारी स्नेही सुनीता बहन मेरठ, वो भी यहाँ पधार कर इस मंच की शोभा बढ़ाएंगी। और आज के पुनः शुभकामनाओं कामनाओं के साथ जुड़े हुए हमारे आदरणीय राजेंद्र भाई जी सांगोली, आप मुंबई से हैं, आप भी मंच पर आकर मंच की शोभा बढ़ाएंगे। मंचासीन महान अतिथियों का आगमन आज यहाँ पर हो चुका है, इसलिए हमारा मंच दिव्य आत्माओं के दिव्य प्रकंपन, दिव्य तेज से सुशोभित हो रहा है। भगवान ने भी कीमती रत्न ही गिनती के बनाए, भगवान ने ही कीमती रत्न गिनती के ही बनाए। उन रत्नों में सबसे ज्यादा कीमती रत्न आज हमारे मंच पर अतिथि बनकर आए हैं, अतिथि बनकर आए हैं। तो जोरदार तालियों के साथ इन सभी अतिथियों का, महानुभावों का हम स्वागत करते हैं। और इसी स्वागत के साथ जैसे हमारी भारतीय संस्कृति है, कार्यक्रम की शुरुआत करने के पहले 3 मिनट उस जगत नियंता निराकार परमपिता परमात्मा शिव उसका हम ध्यान करेंगे और आगे कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे।
अब तेरी अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा।
सभी मंचासीन महानुभावों का स्वागत। मैं अपनी बीके बहनों को निवेदन करूंगी कि आप बैच गुलदस्ता और शॉल के साथ आप सबको सम्मानित करें हमारी ब्रह्मा कुमारी बहन। हमारी आदरणीय शीलू दीदी जी का स्वागत। प्रेम भाई जी का भी स्वागत करेंगे। अतिथिजनों का भी स्वागत हो रहा है। बहुत ही सुंदर निमा शाम का समय है जहां पर आज इस अरावली के प्रांगण में इतनी महान विभूति हम सबके बीच सुशोभित है और उनकी ये सारी वरदानों की जो भी झोली है आप सबकी भरेंगे। प्रेम भाई जी का भी जोरदार तालियों से आप स्वागत करेंगे। हमारी मेरठ से आई सुनीता बहन जी, कृष्णा भाई जी, लक्ष्मीचंद भाई जी, इसके साथ साथ मैं कहते ना फूलों से स्वागत, गुलदस्तों से भी स्वागत और इसी स्वागत के साथ साथ आज मंचासीन और आप सभी सर्वोच्च समाज सेवक यहाँ पर जो पहुंचे हुए हैं, तो मैं गीत संगीत के साथ अमरावती कल्चरल जो ग्रुप है उनको मैं निवेदन करूंगी। अस्मिता संगीत निकेतन अमरावती से लक्ष्मी रोड़े और माही इंगोले, और आज का ये गीत है सुवर्ण भारत सपनों का। सुवर्ण भारत सपनों का अमरावती की कन्याएं डांस के साथ सबका स्वागत वेलकम।
भारत सपनों का प्यारा भारत अपनों का,
स्वर्णिम भारत सपनों का प्यारा भारत अपनों का।
वसुंधरा पर देखो वो साकार हो रहा है, सतयुग देवी देवों का महाराज युगी देवी देवों का महाराज हो रहा है, महाराज हो रहा है। नीले नभ के नीचे अपना एक भारत मुस्कुरा रहा,
पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सुखद सागर लहरा
हरियाली मंडल से मधुरस छलक रहा है
बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से इन कन्याओं का हम उमंग और उत्साह बढ़ाएंगे। थैंक। आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता के रूप में हम सबके बीच में परम श्रद्धेय परम आदरणीय हमारे प्रेम भाई जी यहाँ उपस्थित है। तो आप सोशल विंग के वाइस चेयरपर्सन भी है, आप गुलबर्गा सब जोन राजयोग सेवा केंद्र के डायरेक्टर है। लगभग 55 वर्षों से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित है। आपको गुजरात यूनिवर्सिटी से संस्कृत में गीता अलंकार पद से नवाजा गया है या सुशोभित किया गया है। ऐसी महान हस्तियों के लिए हम जोरदार तालियों से आपका प्रथम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। नाम तो बहुत अच्छा है जो आप सोशल सेवा के साथ जुड़े हुए, जहां प्रेम स्नेह प्यार। तो मैं आपके लिए क्या कहूं कि आप के कौन कहता है प्यार एक धोखा है, कौन कहता है प्यार एक धोखा है जिसका प्यार सच्चा तथा समर्पण भाव का है। आज विषय के साथ हमारे भाई जी का अपना जीता जागता इतना सुंदर समर्पित जीवन है, तो जिसका प्यार सच्चा तथा समर्पण भाव का होता है उसे तो स्वयं भगवान भी साथ देता है, उसे तो स्वयं भगवान भी साथ देता है। ऐसे साथ ही साथ रखकर आज इतना सुंदर कार्य आप कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको आमंत्रित करूंगी आप अपने वक्तव्य को यहाँ पर सभी के सामने आज रखेंगे। आदरणीय सम्मानीय आज हमारे प्रेम भाई जी।
ओम शांति। मैं कुछ बोलूं उसके पहले एक छोटा सा प्रश्न, वो यह है कि हमारे वक्तागण दो एक दिन से ये कहे जा रहे हैं समाज सेवी, तो एक प्रश्न उठता है हम सब समाज सेवी हैं क्या? क्योंकि अन्यान्य वृत्तियों से यहाँ हम पधारे हुए हैं, हमारी वृत्ति समाज सेवा से कई मील दूर है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है, मैं ठीक बोला? परंतु मैं सोच रहा था कि हम सब समाज सेवी हैं, परंतु अर्थ जो निकलता है ना समाज, समाज वैश्विक होता है, समाज को कहा जाता है कि सोसाइटी इज द वेब ऑफ रिलेशंस, संबंधों का एक ताना बाना है। तो संबंध, यदि आप समाज शब्द को हटा देंगे और व्यक्ति को लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हम हर एक सेवाधारी हैं। एक दूसरी बात समाज सेवा। सेवा तो करते आए, मैंने प्रथम दिन भी आपसे निवेदन किया था कि यदि इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आपको बहुत काल से सेवा करने वालों का दर्शन होगा, चाहे वो राजे होंगे या श्रीमंत होंगे या अन्य कोई व्यक्ति विशेष होगा, मगर करते आए हैं सेवा। और उस सेवा से शारीरिक एक सांत्वना मिली होगी, मिलती भी है, परंतु शरीर, हमें सिखाया गया एक दो दिन पहले कि शरीर धीरे 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 कृश होता जाता है, परंतु जो अंदर चैतन्य सत्ता है वो चैतन्य सत्ता ऊर्ध्वमुखी चलती है, अनुभव अधिक होता है। बुजुर्गों को कहा जाता है कि ये अनुभवी है, तो अनुभव बढ़ता है। इसीलिए सेवा तो करते आए, परंतु हमारा जो जहां आप बैठे हैं, हम सेवा से अधिक, मैं ये मानता हूं विशेष कि समाज परिवर्तक, समाज सुधारक ये हैं। और उस दिन कहा था मैंने कि समाज सुधार के लिए जिन्होंने प्रयास किया, अपना तन मन लगाया, उन्हें बहुत शिक्षाएं झेलनी पड़ी, बहुत कष्ट अनुभव करना पड़ा, ऐसा इतिहास बताता है या गतकालीन ग्रंथ बताते हैं। तो यह ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जब हम यहाँ आते हैं तो ये एक विपरीत शब्द है विश्वविद्यालय, क्योंकि हमें ये कहा जाता है कि ना तो आप पढ़ाते हो सिस्टमैटिकली और न ही आप कोई सर्टिफिकेट देते हो, तो सर्टिफिकेट लेकर के करेंगे क्या। आजकल देखते हैं हम, मैंने देखा है एक एमए बीएड का व्यक्ति रोड टार रोड बनाने में लगा हुआ है, एक एमबीए का स्टूडेंट आज 8,000, 9,000, 10,000 के सेवा ले रहा है, इतने रुपयों में सेवा कर रहा है। तो पढ़ाई एक जमाना था, ये पास होते ही उसको सेवा मिलती थी, आज ऐसा नहीं है। आज बाबा कहता है कई तो लाख डेढ़ लाख कमाते हैं और कईयों का तो कोट फटा हुआ होता है, ऐसा देखा जाता है। और परंतु हम कोई सेवा नहीं करते हैं, हम सुधारते हैं, सुधारक। तो सुधारना अलग बात है, सेवा अलग। सेवा माना जैसे तैसे आप हैं, हमसे जो बन पड़ता है हम करते हैं, चाहे वो रोटी हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे मकान हो, वो हम देंगे, ये हुई सेवा। स्वास्थ्य की दृष्टि से देते हैं, धूप काला है तो पानी पिलाते हैं, प्याऊ उधर उधर रखे होते हैं, तो वो हुई सेवा। आप कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, आप, ये सेवा होती रहती है और इसको बढ़ावा भी मिलता है। इसके पीछे समझिए कोई सेवा करता है तो उसको समाज वाले भी सहयोग देते हैं, धन का सहयोग देते हैं, अन्य अन्य सहयोग देते हैं। जब बात सुधार की आती है ना, तो वहां थोड़ा सा उनका फेशियल एक्सप्रेशन जो होता है ना, वो बदल जाता है, ऐसा मैंने देखा है। क्योंकि प्रारंभ में जब हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए और सेवा करने निकले तो लोगों को यही था, प्रचार इतना जल्दी हो जाता है और नेगेटिविटी का प्रसार तो और ही अधिक होता है, जहां तक मैंने देखा है। अच्छाई बहुत देर से अपना स्थान बनाती है, परंतु बुराई बहुत जल्दी बना लेती है। तो ऐसे ही यहां बुराई नहीं थी, परंतु लोग मानते थे कि ये ब्रह्मा कुमारी क्या सेवा करती है, न किसी को कपड़ा देती है, न किसी को भोजन देती है, न किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट करती है, न कुछ करती है। पर आज बदल गया है, क्योंकि उनको पता पड़ा कि यहां पर समाज को सुधारना है तो व्यक्ति को सुधारो, व्यक्ति सुधर जाए तो समाज ऑटोमेटिकली सुधरेगा। व्यक्ति सुधरना, जहां मेरी बात आती है कि आपको ये करना है तो मैं थोड़ा पीछे हटता हूं, जैसे कि यहां ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नियमों से तो हम अनभिज्ञ नहीं है, हम नहीं जानते हैं ऐसा नहीं है, सब जान गए आज, परंतु वो धारणा, वो एक शक्ति अपने अंदर आत्मसात करने का प्रयास हम कम कर पाते हैं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं परंतु ईश्वर हमारे माध्यम से करा रहा है, ऐसा हम कहेंगे, परंतु लौकिक में बोला जाता है कि करण करावनहार तो वही है, कर्ता कर्विता तो वही है, और गीता में भी एक तरफ है कि भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्र और उड़ानी मायाया, कि वह ईश्वर ही हमको यंत्र की तरह घुमा रहा है, हम कुछ नहीं है। कई बार ये भी कहा जाता है कि हम कठपुतली हैं, उसके सूत्र कहीं और हम कहीं और, वो नचा रहा है हम नाच रहे हैं, ऐसी एक परिज्ञान हमको दिया गया है, पर ऐसा है नहीं। हमको ईश्वर सिर्फ एक दो दिन पहले हमें सिखाया गया कि भगवान न सुख देता है न दुख देता है, सुख भी नहीं देता दुख भी नहीं देता, परंतु भगवान सुख का रास्ता बताता है और उस रास्ते पर जो चलेगा उसको प्रारब्ध मिलेगी और वो व्यक्ति से। इसीलिए और एक तरफ गीता में ये भी कहा हुआ है कि आत्मना आत्मानम उद्धरेत नात्मानम अवसादयेत, आत्मा का उद्धार आत्मा ही, माना व्यक्ति का उद्धार व्यक्ति ही कर सकता है, न कि ईश्वर या कोई अन्य व्यक्ति। तो मेरा उद्धार कौन करेगा, मैं ही, किस आधार पर, तो वो आधार नहीं था हमारे पास कल तक, वो क्या आधार है, तो ये अब हमें पता पड़ा कि वो है ईश्वरीय ज्ञान। और कहा ये गया है ईश्वरीय ज्ञान या ज्ञान के बारे में, नहीं त्रिंशु लोकेशु, तीनों लोकों में ऐसा कुछ भी नहीं है ज्ञान के सदृश, वो कौन सा ज्ञान, या कि ये ज्ञान परम विद्या है वो कौन सा ज्ञान, नहीं पता था। हम तो पहले यही समझते थे ज्ञान माना बीए एमए डिग्री प्राप्त करना, अब वो भी लोग कम कर रहे हैं, अन्य अन्य फाइनेंशियल जो मिलना है उस वो भागदौड़ चली है आजकल। इसीलिए हम ये चाहते हैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से एक एक व्यक्ति को, हमारी बहनें बैठ करके, जैसे कोई शिल्पी एक रफ पत्थर को काट काट करके मूर्ति बनाता है, मेहनत लगती है पत्थर को मूर्ति बनाने में, ऐसे ही हम यह समझते हैं कि हमारे अंदर जो पत्थर के गुण हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष असूया, अब इनसे कैसे पार पड़ेंगे, ये तो अंतर तक गहराई तक बैठे हुए हैं, इनकी पेठ गहराई है, पर इस गहराई से उनको निकालना तो ये संभव हम समझते हैं नहीं है, परंतु अब यहाँ आते हैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, पहले तो हम घबराते हैं ये क्या होगा कैसे होगा नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, हमारे पीछे लोकलाज भी बहुत है, परंतु महिमा उसकी होती है, जैसे मीरा के बारे में कहा जाता है, मीरा पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे लोक लाज तज, लोग क्या कहेंगे, तब तो बहुत कुछ बोल गए उसके प्रति, पर अब उस मीरा को संत के रूप में मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, टाइम होना। ऐसे ही यदि ईश्वरीय नियमों को हम लाते हैं तो पहले हमारे घर वाले विरोध करेंगे, ये पक्का है, जैसे सवेरे बाबू भाई समझा रहे थे तो, परंतु फिर धीरे धीरे ऐसा होता है कि कहते हैं ये हमारे घर का देवता है, हरेक का इष्ट देव होता है ना, ऐसे ही मैं मानता हूं कि ये जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां आप भी हैं, तो ये अपने अपने घर के इष्ट देव हैं, क्योंकि भगवान खुद कह रहा है कि हे बच्चों तुम इस दुनिया के लिए इष्ट देव हो। और लोग भी ये मानते हैं, जैसे एक तरफ तो शिव को मानते हैं, दूसरी तरफ लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण राम सीता को भी कहेंगे हे प्रभु, हमें सुख दो, शांति दो, आनंद, वो कौन है? वो तो परमात्मा नहीं है, परंतु उसको उनसे भी मांगते हैं, साधारण व्यक्ति से भी मांगते हैं, चलो सब होना तो पत्थर से भी मांगते हैं। ऐसी एक सामाजिक रीति चली आई है आज तक, तो उसको तोड़ करके आत्मिक एक अनुभव करना हमारे लिए सुलभ हो गया। आज देखते ही देखते हमारा यह ईश्वरीय ज्ञान आज 5 कंटिनेंट में चला गया, और लोग अपने अपने धर्मों में रहेंगे। न हम किसी क्रिश्चियन को हिंदू बनाना चाहते हैं, न ही किसी को मुसलमान से हिंदू बनाना चाहते हैं। वो भले अपने अपने धर्म में, अपने अपने संप्रदाय में, अपने अपने नियमों में रहे, परंतु जो नियम, जो धारणाएं आत्मा के कल्याण के लिए हैं और उससे उसको लाभ होता है, शांति मिलती है, स्थैर्य मिलता है, वो उसको धारण करना होगा। और क्या फर्क पड़ता है जो हमें समझाया जा रहा है 2 दिन से कि तुम एक आत्मा हो, इसमें कोई संप्रदाय नहीं है, इसमें कोई धर्म भेद नहीं है, ये तो व्यक्ति व्यक्ति की बात है। जो हर एक काला है कि गोरा है, लंबा है कि ठीघना है, मोटा है कि दुबला है तो वो आत्मा है, तो वो बिंदु चेतन शक्ति। ऐसे भी कहा जाता है, आपने सुना है, देख बाबा जब तुम शरीर छोड़ोगे तो तुम्हारी पत्नी गृह द्वार तक आएगी, पुत्र स्मशान तक आएगा, उसके आगे क्या आएगा? उसके आगे तेरा किया हुआ पाप, तेरा किया हुआ पुण्य तेरे साथ आएगा। ऐसा ऐसी गाढ़ मान्यता, गहरी मान्यता है, परंतु ये कभी किसी ने नहीं सोचा कि वो स्मशान के आगे जो कह रहे हैं पाप पुण्य की बात, वो स्मशान के आगे कौन जा रहा है, इसकी कल्पना नहीं है। अब यहां कहा जाता है उस स्मशान में शरीर छोड़ने के व्यक्ति के आगे जाने वाली वो आत्मा है। वो आत्मा कहाँ जाएगी? पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये आद्य शंकराचार्य ने कहा कि ये पुनर्जन्म होता है मनुष्य मनुष्य का, प्राणी में नहीं, निश्चित है 100%। वो ये संस्था हमारी सिखाती है, और हम ही देव थे, धीरे 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 साधारण मनुष्य बने हैं। अब पुनः वह ईश्वर नए ढंग से नया ज्ञान नई दुनिया के लिए दे रहा है। ज्ञान निश्चित ही अलग है, जब मैं इसमें आया उस समय तक मैं संस्कृत का प्राध्यापक था, तो संस्कृत शास्त्र या कुछ भी, पहले दिन जो बहन ने हमको ज्ञान दिया कि तुम आत्मा निर्लेप निर्लेप हो कि नहीं हो, सब कहते हाँ वो तो निर्लेप है, खाओ पियो मौज करो, कुछ होने वाला नहीं है। वो बहन ने मेरे को कहा कि नहीं, आत्मा लेप शेप से परे नहीं है, निर्लिप्त नहीं है। तो हमने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, शास्त्र गलत होते, क्योंकि शास्त्र के लिए कहा गया है कि जहां तत्र शास्त्र व्यवस्थित हो, किम कर्तव्यम किम कर्तव्यम, क्या करना क्या नहीं करना, तो शास्त्र ही, यहां तक कि गीता में भी कहा गया है कि तुम शास्त्र को देख करके चलो, तो कैसे हो सकता है? परंतु है तो बात सच, दुख सुख आनंद शांति प्रेम सारा जो अनुभव है वो शरीर नहीं करता है, बल्कि मैं करता हूं, आत्मा करती है। ये भी परिज्ञान हमको है, समझ है, परंतु वो समझ मेल नहीं खा रही है। और दूसरी बात थी कि एक ही परमात्मा है, शिव है। अब यहां जो बैठे हैं उसमें कोई शैव है, कोई शाक्त है, कोई ब्राह्मी है, कोई वैष्णव है, हर तरह के हम लोग यहां हैं। तो हम लौकिक में वैष्णव थे, तो हमारे को यह सिखाया गया था कि सर्वदेवम प्रतिकृतम नमस्कारम विष्णु प्रतिगच्छति, आप किसको भी नमस्कार करो वो विष्णु को जाके पहुंचता है। तो उसको कहे ऐसे व्यक्ति को कि नहीं शिव को पहुंचता है, तो गलत धारणा हो जाती है। तो ज्ञान यहां जो दिया जा रहा है वो नया जरूर है, परंतु अनुभव गम्य है। जितना हम इसकी गहराई में जाएंगे और थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि कोई भी बात होती है ना, वो जितना समझने की कोशिश करेंगे उसके ऊपर के लेयर्स खुलते जाएंगे और ज्ञान स्पष्ट होता जाएगा। और हमने प्रार्थना जरूर की है ईश्वर से कि हे ईश्वर, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। वो हमारे परदादा ने किया, दादा ने किया, बाप ने किया, हम कर रहे और हमारे बच्चे करेंगे, पोते पर पोते, वही बोलेंगे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। परंतु गया कोई नहीं ना, पर अब देखते हैं ब्रह्मा कुमारी, कहा जाता है कि ये लोग पूजा नहीं करते, अन्य देवताओं को नहीं मानते। नहीं, हम पूजा करने के स्थान पर करते आए हैं जन्म जन्मांतर, और अभी अभी हम पूज्य बनने में लगे हुए हैं। जैसे अभी कहा जाता है पूजनीय, अभी हम पूजनीय नहीं है पर बन रहे हैं। बनाने वाला वो ऊपर बैठा है, वो मार्ग प्रदर्शन करता है, तो उस मार्ग पर जो चलेगा वो पाएगा, नहीं चलेगा नहीं पाएगा। करो खाओ, नहीं करो तो नहीं खाएंगे। तो ऐसा एक ज्ञान यहाँ मिलता है। अब आप कहेंगे समाज सेवा से इसका क्या लेना देना, इसका लेना देना है ना। एक व्यक्ति एक घर से ज्ञान में आ जाता है, वो चलने लग, इसके ज्ञान को फॉलो करने लगता है, तो उसको देखा जाता है तो फिर उसकी युगल चलेगी, उसके बच्चे चलेंगे, फिर अन्य अन्य व्यक्ति भी चलेंगे। ये परिवर्तन होता है, हुआ और हो रहा है। जैसे अभी आप आए हो यहाँ 400-500, तो लाया गया है ना, और यहाँ से जाने के बाद हमको पता है 400-500 में से 5-7 जो बोला अभी पहले वाले सेशन में बोला गया एक आना, तो वो एक आना शुरू करेंगे। टाइम लगेगा मगर आना सबको जरूर है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, टाइम लगेगा। जैसे ही बाबा कहते हैं जैसे ही विनाश शुरू होगा भागेंगे, परंतु उसके पहले आकर के थोड़ा पुरुषार्थ करेंगे, प्रयत्न करेंगे, तो कहा जाता है करतले वो आम कहते हैं हाथों तीरी पर बहिष्ठ, ऐसा होगा। इसीलिए व्यक्ति व्यक्ति की सेवा करता है और व्यक्ति व्यक्ति से समष्टि बनती है, विश्व बनता है व्यक्ति। इसीलिए एक एक व्यक्ति को यदि ज्ञान दिया जाता है तो उस व्यक्ति के माध्यम से अनेक व्यक्तियों तक ये ज्ञान पहुंचता है और पहुंचेगा भी। जैसे एक प्रजापिता ब्रह्मा एक अकेला चल रहा था, परंतु उसके पीछे 300-400 माताएं बहने भाई चले और वो एकदम परफेक्ट व्यक्ति बने। परफेक्शन ईश्वर के सानिध्य से आता है, क्योंकि वो न केवल ज्ञान देता है बल्कि ज्ञान को धारण करने की शक्ति भी देता है। ये हम सबका अनुभव है। ज्ञान तो बहुत है ना, देर इज एन एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज बोला जाता है कि विस्फोट है ज्ञान का, इतने लाइब्रेरीज हैं इन दिनों में, तो वो सारे के सारे डिजिटल लाइब्रेरीज मिल रही है, परंतु फायदा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ज्ञान है, शक्ति नहीं मिल पा रही है, और शक्ति देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि वो परम व्यक्ति परमात्मा हम सब का पिता है। उसको समझ करके उसके इस ज्ञान को लेंगे तो ज्ञान की शक्ति एक व्यक्ति में आई तो परिवार में आएगी, फिर समाज में आएगी, ऐसा होगा और निश्चित होगा। इसी एक अवधारणा को लेते अब इसमें समर्पण भाव, समर्पण तो भारत के नर नारी में समाया हुआ है। बाप समर्पित होता है बच्चों को, पत्नी समर्पित होती है पति को, सेवक समर्पित होता है स्वामी को, ये देखा गया है। और भगवत भक्ति में भक्त समर्पित होता है भगवान को न जानते हुए भी। ऐसे ही हम जो समर्पित भाव की बात कर रहे हैं, तो जब हमारे में परिवर्तन आता है तो परिवर्तन के अंदर हम देखेंगे कि हमारा समय लग रहा है उस चिंतन के प्रति, उस पुरुषार्थ के प्रति, हमारा धन लग रहा है उसमें, क्योंकि जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन होगा। कोई व्यक्ति समझिए, अभी ये फ्लावर पॉट है, यदि मैंने ये फ्लावर पॉट दिया और सीता बहन के हाथ से वो फ्लावर पॉट गिरा तो मेरे को संकल्प चलेगा, उनको नहीं चलेगा ये क्यों गिरा, इसको उठा के रखो, क्योंकि मेरा है ना। तो ऐसे ही जहां धन लगता है उसके पीछे मनुष्य दौड़ता है। ऐसे ही यदि वो आत्म कल्याण के प्रति अपना धन लगाएगा, हम लगाते हैं ये सारा, आप देखेंगे, आप किसी मंदिर में चले जाइए, वो बल्ब के ऊपर भी नाम होता है, ट्यूबलाइट के ऊपर, आईने में नाम होता है, इवन आप सीढ़ियों पर भी नाम देखेंगे। यहां आप कहीं भी चक्कर लगाइए, आपको किसी व्यक्ति का ये नाम नहीं मिलेगा जो लिखा हुआ हो कि इन्होंने इस मकान को, इस बिल्डिंग को, इस भवन को बनाने के लिए इतना दान दिया। नोवेयर। क्यों नहीं है? क्योंकि समर्पण भाव भरा हुआ है। तो हरेक के अंदर ऑटोमेटिकली समर्पण भाव आता है जब उसको ईश्वरीय प्रेरणा के माध्यम से ज्ञान को धारणा करने की शक्ति आती है। तो ये बहुत जरूरी है समझने का। मैंने पहले कहा कि हम कोई सब सेवा समाज से नहीं है, कई व्यक्तियों से यहाँ हम आए हुए हैं, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई ऑफिसर है, कोई कुछ है, कोई क्या है, परंतु है सेवक सेवाधारी। ये समझ करके कि हम जैसे घर की सेवा करते हैं तो समाज की सेवा करें, वो कोई मंदिर बनाया, कोई कुछ किया, उसमें सब आज केंद्र बनते हैं, हमारे राजयोग का केंद्र बनते हैं। देखिए हर गांव हर शहर में ये केंद्र बने हुए हैं जहां जाकर के व्यक्ति अपनी बुराइयों से मुक्ति पाता है। निश्चित है, हम जब ट्रेन में आते हैं ना तो केटरिंग वाला कभी हमारे पास नहीं आता है कि आप भोजन लेंगे क्या, नहीं, हाँ पानी के लिए पूछता है, पानी लेंगे, क्योंकि उसको पता है कि ये ब्रह्म कुमारी ओम शांति वाले हैं, ये कुछ नहीं लेते हैं। बाहर के संबंधियों में भी देखेंगे, अरे बाबा वो आ गया ओम शांति वाला, कुछ नहीं लेता है, फल फ्रूट दे दो, ठीक हो। तो ये पक्का जैसे धारणा के ऊपर विश्वास मनुष्यों का है, ये वंडरफुल काम करता है। तो ऐसा ये व्यक्ति से व्यक्ति बदलने का कार्य ये है। जैसे एक और वाक्य मैं बोल दूं आपके पक्ष, ये स्वे स्वे कर्मणि अभिरत, सीविंग मशीन वाला है, हर ड्राइवर्स है, खाना बनाने वाले हैं, खाना, ये सब लेबर नहीं है, सेवादारी है, वॉलेंटियर्स है, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा कि सब बने। सारा जो बनता है वो सारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भाई बहने बनाते हैं। ये समर्पण भाव तो व्यक्ति में आया ना, तो यही देखते हैं यहाँ ऐसा है तो लोगों को प्रेरणा मिलती है कि हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए। तो उस प्रेरणा को देने के लिए हमारी बहनें आप सबको यहाँ बुला के लाई हैं। सीता बहन यहाँ पर है, एक दिन ये इनके अमरावती से एक पोट दुखे आए थे, वो कह रहे गत 20 वर्ष से ये बहन मेरे को बोल रही है माउंट आबू चलो, माउंट आबू चलो, मैं नहीं गया, आज आया तो मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, इतने दिन नहीं आया। तो ऐसा एहसास न हो, आपको भी बहुत वर्षों से बोला गया होगा कि चलो कॉन्फ्रेंस है, सम्मेलन है, सेमिनार है, तो आज वो स्वर्ण अवसर आया, आप आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। इस ज्ञान को अपने में लेकर के जाइए, एक इतना भी रिंचक भी होगा, स्वल्पमस्य कहा जाता है, स्वल्पमस्य धर्म से त्रायतो महतो भयात, इस धारणा का थोड़ा भी अंश आप अपनाएंगे तो निश्चित ही ये हमारे लिए बहुत 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 लाभकारी होगा और इसका लाभ आप लेंगे। इस विश्वास के साथ अभिनंदन,
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ आपने अपना वक्तव्य हम सबके समक्ष रखा और आपका मेन उद्देश्य ही था कि व्यक्ति परिवर्तन से ही समाज परिवर्तन, जिसके लिए एक छोटी सी बात, एक पिताजी बहुत काम में व्यस्त थे लेकिन बच्चा बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहा था, तो उसको रोकने के लिए उनके पास एक पेपर पड़ा हुआ था, उन्होंने 4-5 टुकड़े करके नीचे डाल दिया और बच्चे को कहा कि इसको जैसा है वैसे ही आपको लगाकर मुझे वापस करना है। तो बच्चे ने सोचा और पीछे से उस पेपर को देखने लगा तो उसमें एक व्यक्ति का चित्र था, तो उसने फटाफट व्यक्ति के चित्र के कारण उसको जोड़ लिया और अपने पिताजी के पास जाकर दे दिया। तो पिताजी देखते ही रहे कि इतना जल्दी, तो आपने ये कैसे बनाया? तो उसने यही कहा कि पीछे एक व्यक्ति का चित्र था, उस व्यक्ति के हर अवयव को, अंगों को मैंने पीछे से जोड़ लिया और ये तैयार हो गया। इसी तरह से आपके भाव भावनाएं हैं कि आप अपने आप में अगर ऐसा परिवर्तन लाएंगे तो कहा जाता है इस विद्यालय में स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन। आप एक सैंपल बनेंगे और आपके द्वारा अनेक आत्माओं को आपके जीवन से प्रेरणाएं मिलेगी। तब परमात्मा हम सबको यही शिक्षाएं देते, ऐसा कर्म करो नर ऐसी करनी करे सो नर से नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे नारी सो श्री लक्ष्मी बने। तो इसी को ही लेकर हम आज अपने इस मंच से आमंत्रित करना चाहती हूँ गेस्ट ऑफ ऑनर आदरणीय भ्राता कृष्णा भाई जी गंभीर, करनाल हरियाणा से है, पास्ट असिस्टेंट गवर्नर रोटरी इंटरनेशनल। आपके परिचय में मैं क्या कहूँ, आपने 1974 में यूथ फेस्टिवल कंपटीशन में बेस्ट एक्टर का एक अवार्ड जीता। सितंबर 2012 में वरिष्ठ प्रबंधक के पद से रिटायर्ड हुए। आज 24 साल से पहले रोटरी ज्वाइन किया, रोटरी मोटो सर्विस अबाउ सेल ने आपके जीवन को एक नया आयाम दिया। क्लब के विभिन्न पदों पर आप काम करते हुए वर्ष 2011, 2012, पुनः 2020, 2021 में प्रेसिडेंट रहे। 2015, 2016 में असिस्टेंट गवर्नर के रूप में पद पर आपने कार्य किया। आपको मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ, आप अपने वक्तव्य को हम सबके समक्ष रखेंगे। आदरणीय भ्राता कृष्णा भाई जी गंभीर।
ओम शांति। परम आदरणीय मंच, वे सुधी श्रोताओं, एक शेर प्रस्तुत करता हूं। खुद तराशना पत्थर और खुदा बना लेना, खुद तराशना पत्थर और खुदा बना लेना, आदमी को आता है क्या से क्या बना लेना। ये आभास तो आपको यहां आते ही हो गया होगा। हमने भी 17 तारीख को 14 घंटे की थकान भरी यात्रा के बाद जैसे ही ज्ञान सरोवर की परिसर में प्रवेश किया, एक अलौकिक ऊर्जा का आभास हुआ। मानो खुशियों की रिले रेस चल रही हो, कोई भी अपनी खुशियों को समेट नहीं रहा था बल्कि बिखेर रहा था, बांट रहा था। मुस्कुराहटें फैलती जा रही हैं एक चेहरे से दूसरे चेहरे तक, पॉजिटिव एनर्जी हवा में घुल रही है। अनंत आनंद ही आनंद, शांति। ऐसा लग रहा था जैसे यही जीने की कला है। कल गिरीश भाई भी हमें हंसने के फार्मूले सिखा रहे थे, हंसिए, बेतकल्लुफ होकर हंसिए, यही जीवन की परिभाषा है। मैं पूछना चाहूंगा आपसे, जिंदगी में आपकी सफलता के मायने क्या है? वो सब जो अब तक आपने पा लिया है, बड़ा सा घर, बड़ा बिजनेस, बड़ा पद, बड़ी ख्याति, आईने में देखते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, अपने पे गुरूर सा होता है कि कैसे इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। लेकिन यह ज्ञान सरोवर में आने के बाद, ज्ञान सरोवर की डुबकी लगाकर गुरूर डोलता सा नजर आता है। क्या जो सफलता हमने आज तक प्राप्त की वही हमारा लक्ष्य था, या यहां आकर जो मन आत्मा का प्रक्षालन हुआ है उसकी धुलाई हुई है? मुझे ऐसा लग रहा है हम अब सही पथ पर अग्रसर हैं। दोस्तों, क्या आप मेरे साथ सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो हाथ उठाइए, और अपने लिए तालियां भी जरूर बजाएं। एक फ्रांसीसी लेखक दार्शनिक हुए हैं, चार्ल्स डी बॉस, उनका एक कोट है, द इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस टू बी एबल एट एनी मोमेंट टू सैक्रिफाइस, टू बी एबल एट एनी मोमेंट टू सैक्रिफाइस व्हाट वी आर फॉर व्हाट वी कुड बिकम। यानी एक बेहतर जीवन पाने के लिए, एक बेहतर जीवन जीने के लिए हमें हमारा आज छोड़ने के लिए तत्पर रहना चाहिए। मैं मानता हूं कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। सुई में धागा डालना मेरे लिए कठिन हो सकता है, पर उस ब्रह्मा कुमारी दीदी के लिए नहीं, यहां बैठी है एक शिविका दीदी, वो बोलती है मैं शिव बाबा के ध्यान कक्ष में जाती हूं, बाबा को गुड मॉर्निंग बोलती हूं और मेरी बाबा से डायरेक्ट बातचीत शुरू हो जाती है, मैं ध्यानमग्न हो जाती हूं, सुई में धागा डल जाता है। पर इसके लिए हमें थोड़ा अधिक प्रयास करना होगा, तभी सुई में धागा डल पाएगा। जिंदगी में कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है। 1990 में लगभग 34 वर्ष पूर्व मेरी पोस्टिंग हेली मंडी गुड़गांव में थी, वहां एक दीदी ने मुझे कहा था आपको माउंट आबू लेकर जाना है, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं नहीं आ सका। दीदी ने वो जो बीज मेरे मन में बोया था वो अब जाकर फलीभूत हुआ है लगभग 34 वर्षों के बाद। प्रेम दीदी करनाल सेक्टर 7 में एक बार उनसे बात हुई और अगले ही दिन टिकट कट गया यहां आने के लिए। नहीं मालूम था स्वर्ग का टिकट है या स्वर्ग का टिकट कटा है। इसके लिए मैं प्रेम दीदी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मन की शांति पर तो सबका अधिकार होता है। यहां जो सुकून मिला है, शांति मिली है, उससे क्यों वंचित रहे अब तक। संभवतः इस जीव को जिस खुशी की तलाश थी वो हम बाहर ही ढूंढते रहे, जबकि वो पॉइंट ऑफ लाइट हमारे भीतर था। बहता पानी लौट कर नहीं आता, यह सत्य है, लेकिन आज हम स्वयं को संशोधित कर जिंदगी के सही मानदंड तय करें। देश दुनिया को क्या दे सकते हैं इस पर विचार करें। हमें इतनी नेमतें मिली हैं, हम जहां बैठे हैं कोई स्वर्ग इससे सुंदर या बेहतर हो सकता है क्या? हमें प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का आभारी होना ही चाहिए। हम जीवन पर्यंत अंधेरों में भटकते रहे, खैर अंधेरे को भी कोसना उचित नहीं, उसका किरदार भी मां जैसा होता है, उसकी कोख से ही तो उजाले का जन्म होता है। आओ मित्रों, उज्जवल आत्मा के साथ नए सफर की शुरुआत करें, आगे बढ़ें। आशा है आप सब इसके लिए तैयार हैं। अंत में कहना चाहूंगा, ये तुम्हारा नूर है जो पड़ रहा है चेहरे पर, ये तुम्हारा नूर है जो पड़ रहा है चेहरे पर, वरना कौन देखता मुझको इस अंधेरे में। ओम श्री।
भ्राता जी ने संक्षिप्त और सुंदर शब्दों के साथ साथ अपना वक्तव्य हम सबके समक्ष रखा, तो हम आपका भी जोरदार तालियों से बहुत बहुत अभिनंदन भी करते हैं। और आपके लिए यही रहा, ये दुनिया तो मंजिले है, दुनिया तो मंजिले है, मंजिले है तो चुनौती भी है, और चुनौती है तो रास्ते भी है, रास्ते है तो सफलता भी है। तो सच्ची सफलता आप जैसे सच्चे सेवक में है, आप जैसे सच्चे सेवक में है। बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। अभी संक्षिप्त रूप से हम सबके बीच शुभकामनाएं देने के लिए आज आमंत्रित है हमारे आदरणीय लक्ष्मीचंद भाई जी, जो रुड़की से है, एजुकेशन मेंबर सोशल सर्विस विंग। और आपके परिचय के साथ मैं यही कहूंगी कि आप 1964 से ज्ञान में सिंचाई विभाग यूपी के रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। वर्तमान समय रुड़की द्वारा अपनी सेवाएं दे रही है। सोशल सर्विस विंग के आप एक एक्टिव मेंबर भी है, न केवल सोशल विंग बल्कि स्पार्क विंग, स्पोर्ट्स विंग, एडमिनिस्ट्रेशन विंग, साइंटिस्ट विंग, इंजीनियर विंग के भी आप मेंबर है। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा के आप धनी हो, तो आपको आमंत्रण है और आप अपने संक्षिप्त शब्दों के साथ हम सबके आज के इस कार्यक्रम की शुभकामनाएं रखेंगे। भ्राता आदरणीय लक्ष्मीचंद भाई जी।
आदरणीय महान राजयोगिनी, आज की सभा की अध्यक्षा शीलू बहन, अनुभवी वरिष्ठ राजयोगी प्रेम भाई और मंच पर आसीन सभी भाई और बहनों, सभा में उपस्थित समाज सेवियों और अपने जीवन के लिए नई प्रेरणाएं लेकर जाने वाले सभी भाई और बहनों, सर्वोच्च समाज सेवक तो परमात्मा है। आज का विषय जो है समाज सेवा, समाज सेवा और समर्पण भाव। तो समर्पण भाव समाज सेवा के लिए किसके प्रति जरूरी है, ये मैं कुछ बातें शॉर्ट में अपने अनुभव के आधार पर आपको बताऊंगा। एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं। महाभारत में आपने सुना होगा द्रौपदी चीरहरण का किस्सा। जब वो घटना घटित हुई और बाद में श्री कृष्ण ने द्रौपदी की मदद की, तो द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पूछा, जिसे वो भाई और सखा भी सब मानती थी, कि सखा आपने मेरी मदद पहले क्यों नहीं की। तो श्री कृष्ण का जवाब था, तुमने पहले किसको पुकारा, भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को, अपने पतियों को। जब मुझे पुकारा तो तुरंत मैंने मदद की। तो भाइयों, परमात्मा के प्रति समर्पण भाव ये है कि कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी कार्य आप करते हैं, चाहे समाज सेवा का ही है, सबसे पहले परमात्मा को अर्पण कीजिए, परमात्मा को साथ लीजिए, तो आपके कार्य में सफलता निश्चित है। दूसरी बात, अभी आप दो दिन से शिविर कर रहे हैं, अनुभवी बहनें आपको काफी कुछ सिखा भी रही हैं, तो जो सबसे बड़ी सेवा, समाज सेवा कहें या समर्पण भाव समाज के प्रति, परमात्मा के प्रति, इस दुनिया के प्रति, वो है अपने को आत्मा निश्चय करना। ये देह अलग, मैं आत्मा अलग। जब हम अपने को आत्मा निश्चय करते हैं तो हम परमात्म शक्तियों से डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, उसकी शक्तियां हमें प्राप्त होने लगती हैं, जो हमारी कमजोरियां हैं वो दूर होने लगती हैं और हम इतने सशक्त बन जाते हैं कि कोई भी समाज का कार्य करने में कोई परेशानी नहीं होती, पूरी तरह से सक्षम बन जाते हैं। इसके बाद कोई भी कार्य हम करते हैं, उससे पहले कोई ना कोई संकल्प आता है, थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, तो हर कार्य का आधार है संकल्प शक्ति। क्योंकि बहन जी ने संक्षिप्त में मुझे सुनाने को कहा है, तो मैं एक घंटे की बात 15 मिनट में ही पूरी करूंगा। जब हम कोई संकल्प करते हैं, वो संकल्प वाइब्रेशन के रूप में चेंज होते हैं और वो वाइब्रेशन जब प्रकृति से मिलते हैं तो उस चीज का निर्माण करते हैं जो हम सोच रहे हैं, जो हम बार बार स्मृति में ला रहे हैं, उसका निर्माण होता है। हमारा पॉजिटिव थिंकिंग हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है और वो हर कार्य में, चाहे वो समाज सेवा हो, चाहे वो सांसारिक कोई भी कार्य हो, उसमें हमें शक्ति प्रदान करता है।
जो वाइब्रेशन प्रकृति से मिलके जिस चीज का निर्माण करते हैं वो हमारे ब्रेन के द्वारा जाते हैं। ब्रेन उसको पहले ग्रहण करता है जो संकल्प शक्ति है, और ब्रेन के द्वारा ही वो पूरी बॉडी में भी फैलते हैं। दूसरी बात, जब कोई व्यक्ति पॉजिटिव संकल्प करता है, सपोज जैसे कई वक्ताओं ने बताया खुश रहना, मुस्कुराना, तो जब आप मुस्कुराते हैं उस समय आप पॉजिटिव हैं। मुस्कुराते हैं तो मुस्कुराहट से जो वाइब्रेशन चारों तरफ फैलते हैं उससे प्रकृति भी मुस्कुराने लगती है, और चारों तरफ एक तरह से सेवा होती है। जो भी उस वातावरण के दायरे में मनुष्यात्माएं आती हैं वो भी प्रफुल्लित हो जाती हैं प्रकृति के प्रफुल्लित होने से। ये बहुत बड़ी समाज सेवा हो जाती है। इसके अलावा हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो प्रभावित होता है निगेटिव संकल्पों से भी और पॉजिटिव संकल्पों से भी। तो उसके लिए हमें ये ध्यान देना होगा कि जो संकल्प हम बार बार करते हैं, जो चीज स्मृति में बार बार लाते हैं, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन उसको ग्रहण कर लेता है, और भले ही आप भूल भी जाएं, लेकिन वो उसका निर्माण करने में, उसको बनाने में लग जाता है। तो सबसे बड़ी समाज सेवा और उस सेवा के प्रति समर्पण भाव ये है कि हम अपने संकल्पों को चेक करते रहें। ऐसा तो नहीं कि कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को निगेटिव संकल्प जा रहे हों तो वो हमारी निगेटिविटी को बढ़ाएंगे और समाज सेवा हो या कोई भी कार्य हो उसमें निश्चित रूप से बाधा बनेगी। इसके अलावा जो संकल्प आप करते हैं, सपोज आप पॉजिटिव संकल्प करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ डाइवर्ट हो जाती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये आकर्षण का नियम है। जब आप निगेटिव संकल्प करते हैं तो पूरे संसार की निगेटिव एनर्जी आपकी तरफ डाइवर्ट होकर के आपके जीवन को खराब करने में लग जाती है, आपके सामने समस्याएं पैदा करने में लग जाती हैं। तो कोई भी हम समाज सेवा करते हैं सबसे पहले हमें समर्पण भाव किसके प्रति हो, स्वयं के प्रति और परमात्मा के प्रति। जब हम अपने को आत्मा निश्चय करते हैं, ये संकल्प करते हैं कि ये देह अलग है, मैं आत्मा अलग हूं, तो परमात्म शक्तियां हमारे अंदर प्रवेश करने लगती हैं, बढ़ने लगती हैं। पॉजिटिव संकल्प के लिए पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी आपकी तरफ डाइवर्ट हो जाती है, और निगेटिव संकल्प के लिए पूरे संसार में कितनी बैड एनर्जी है वो आप समझ सकते हैं, कितना पाप हो रहा है वो सब आपकी तरफ डाइवर्ट होकर के आपके जीवन को खराब करने में लग जाता है। तो सबसे पहले समर्पण भाव में ये चीज शामिल कीजिए कि परमात्मा हर समय कोई भी कार्य शुरू करते हैं उसमें परमात्मा का साथ लीजिए, ये उसके प्रति समर्पण भाव होगा, समाज सेवा के प्रति समर्पण भाव होगा। और दूसरा, अपने को आत्मा निश्चय करके देह से अलग दूसरे को भी आत्मा देखिए और खुद को भी आत्मा समझिए, उससे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी और बहुत शक्तिशाली कार्य आप कर सकेंगे, पूरे समाज की सेवा कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने संक्षिप्त वक्तव्य में बहुत कुछ सार आप सबको सुना दिया, और एक ऐसे लग रहा था क्योंकि बाबा के आप बच्चे हैं, आपके अंदर के इनर पावर, और आपका सबके लिए यही था वक्तव्य कि सुखमय बन जाए यह संसार हमारा, पॉजिटिविटी के साथ कि सुखमय बन जाए संसार हमारा और स्वर्ग बन जाए भारत देश प्यारा, स्वर्ग बन जाए भारत देश प्यारा हमारा, तो बस एक ही यही नारा है हमारा, तो बस एक ही यह नारा है हमारे भाई जी के लिए। पुनश्च हम तालियों से आपको तहे दिल से अभिनंदन स्वागत। अभी आप सभी बहुत समय से बैठे हुए हैं, कुछ क्षणों के लिए आप सबको पुनश्च एक मेडिटेशन कराया जाएगा, ताकि इस मेडिटेशन के शक्ति के साथ अगला जो हम सबके लिए जो वक्तव्य है वो बहुत ही अच्छी तरह से आप सुनकर उसको अप्लाई कर सकेंगे। तो मैं संक्षिप्त शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारी आदरणीय प्यारी सुनीता बहन जो मेरठ से है, और आपका संक्षिप्त परिचय, आप बचपन से ही इस ईश्वरीय ज्ञान से जुड़ी हुई है, आप सोशल विंग के रीजनल कोऑर्डिनेटर मेरठ के हैं और आप 32 सेंटरों की प्रभारी इंचार्ज है। आप 30 वर्षों से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही है और आपके समक्ष अपने संक्षिप्त शब्दों के साथ आपको परमात्म शक्ति के साथ जुड़ाएंगी। तो आज कह रहा है स्वयं निराकार भगवान, आज स्वयं कह रहा है निराकार भगवान, आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करते रहो बार बार, आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करते रहो बार बार, और बुद्धि से चले जाओ चांद सितारों से पार, बुद्धि से चले जाओ चांद सितारों से पार, तभी बन जाएंगी शांति तुम्हारे गले का हार, शांति तुम्हारे गले का हार। आदरणीय सुनीता देवी,
ओम शांति। सम्मानित मंच और आज के मंच की शोभा परम श्रद्धे राजयोगिनी आदरणीय शीलु दीदी जी, सभा में उपस्थित समाज सेवी प्रिय भाइयों और बहनों, आपने अनुभव किया होगा जब से आप इस ज्ञान सरोवर एकेडमी में आपका पदार्पण हुआ है, आप पर निरंतर ज्ञान नम्रत की बरसात हो रही है, और इस ज्ञान नम्रत की बरसात में भीगकर मैं समझती हूँ कि आप सभी कुछ न कुछ आध्यात्मिकता का रंग आप पर अवश्य ही लग गया होगा, क्योंकि यहाँ सामने लिखा है सशक्त समाज की कुंजी आध्यात्मिकता। तो आध्यात्मिकता का मतलब घर बार का त्याग नहीं, आध्यात्मिकता का मतलब सफेद वस्त्र या गेरवे वस्त्र धारण करना नहीं, ये बाह्य परिवर्तन आध्यात्मिकता का मतलब नहीं है, लेकिन आध्यात्मिकता का मतलब है आंतरिक परिवर्तन। आध्यात्मिकता का मतलब है स्वयं को पहचानना, परमात्मा को पहचानना, और परमात्मा से जुड़कर परमात्म शक्तियों को स्वयं में समाकर सारे विश्व में बांटना। आप सभी समाज सेवी भाई बहने स्थूल चीजों के द्वारा समाज की सेवा अवश्य ही करते होंगे, लेकिन आज संसार को सबसे ज्यादा आवश्यकता है ईश्वरीय शक्तियों की। तो आज आप जो ये दो दिन से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो उस स्थूल सेवा के साथ साथ ईश्वरीय शक्तियों का दान करने की सेवा भी आप अवश्य ही यहाँ से सीख कर जाएंगे और उसको करेंगे। तो अभी कुछ क्षणों के लिए कैसे हम ईश्वरीय सेवा करें उसकी प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा सा मेरी आपसे नम्र विनती है कि आप थोड़े से अलर्ट होकर बैठें और सब तरफ से अपने ध्यान को हटाते हुए अपने मन को मस्तक के बीच एकाग्र करें। मस्तक के बीच चमकता हुआ सितारा, एक लाइट, ज्योति, चैतन्य आत्मा, मैं आत्मा अमर अविनाशी हूँ, मैं आत्मा इस देह रूपी वस्त्र से अलग, इस देह रूपी वस्त्र को धारण करने वाली इससे बिल्कुल भिन्न एक चैतन्य शक्ति हूँ। ये शरीर एक मिट्टी का दीपक है, इस मिट्टी के दीपक में मैं एक जगमगाती हुई ज्योति हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, शांति मेरी नेचर है, शांति मेरा गुण है, शांति मेरा संस्कार है, मैं शांति का सितारा मस्तक के बीच जगमगा रहा। जैसे मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ, ऐसे ही मुझ आत्मा के पिता परमात्मा, वो भी ज्योति स्वरूप है। इस नीले आकाश से परे एक लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया, जहाँ मैं अपने बुद्धि रूपी नेत्र से उस महाज्योति को निहार रही हूँ। वो परमात्म शक्ति, वो महाज्योति, सुप्रीम लाइट, शांति का सागर है, सर्वशक्तिवान है। उस सुप्रीम लाइट से एक लाइट की तार निकलकर मुझ आत्म सितारे से कनेक्ट हो रही है। परमात्मा जो सर्व शक्तियों का, गुणों का सागर है, उसकी शक्तियां, उनके गुण उस लाइट के तार द्वारा मुझ आत्म सितारे में समा रहे हैं। मैं आत्मा शांति से भरपूर, शांति से संपन्न मास्टर शांति का सागर हूं। मुझ शांति के सितारे से शांति की किरणें निकलकर संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल रही है। प्रकृति के पांचों तत्व शांत हो रहे हैं। मुझ शांति के सितारे से शांति की किरणें संसार की सभी मनुष्य आत्माओं तक पहुंच रही है। मानव मन के अंदर जो क्रोध की, ईर्ष्या की, बदले की आग जल रही है, वो शांति की किरणें उन तक पहुंच रही है, तो अग्नि शांत हो रही है। सभी मनुष्य आत्माएं शांति का अनुभव कर रही है। जहां शांति है वहां सुख है, आनंद है। मैं मास्टर रचयिता अपने शांति के संकल्पों से ऐसा शांत में सुख में संसार रच रही हूँ। शांति के सागर से किरने मुझ आत्म सितारे पर और मुझ आत्म सितारे से सारे संसार में रिफ्लेक्ट हो रही है। शुक्रिया प्यारे पिता परमात्मा, जो आपने मुझे इस श्रेष्ठ कार्य के लिए चुना। प्रतिदिन अपने मन में ऐसा सुख में, शांति में श्रेष्ठ समाज का निर्माण करने का दृढ़ संकल्प लेते हुए अब मैं लौट रही हूँ अपनी वास्तविकता में। प्रतिदिन शांति की रचना मैं अपने भीतर करने का दृढ़ संकल्प लेती हूँ। ओम शांति। शांति शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता बहन जी, आपने सभी को इस अंतर्मन की यात्रा से बहुत दूर उस परमात्म शक्ति के साथ जोड़ लिया। याद आता है, गुरु था, उनके शिष्य थे। एक बार भूकंप आता है और गुरु वहीं बैठे रहते, शिष्य भागने लगे, तो जब भागकर जब पुनः भूकंप बंद हो जाता है, गुरु के पास शिष्य पहुंचते, तो उन्होंने कहा, गुरु जी आपको डर नहीं लगा? हम तो भाग गए, आप तो वहीं बैठे रहे। तो उन्होंने कहा, आप भी भाग रहे थे, मैं भी भाग रहा था। तो ये जो यात्रा है, तो वो तन से भाग रहे थे और हमारी बहन जी ने जो यात्रा सिखाई है वो मन से उस परम पिता परमात्मा परम ज्योति के साथ उन्होंने जुड़वाया। और इसीलिए उसमें वो पावर है, शक्ति है, एनर्जी है, कि जिससे आज हम अपने आप में एक सक्षम बन सकते हैं, सशक्त बन सकते हैं, समृद्ध बन सकते हैं और अपने मन में एक समर्पण भाव को भी उजागर कर सकते हैं। तो एक छोटी सी बात, एक राजा था, उसके पास जो सेवक था, प्रेम भाई जी ने बहुत अच्छी बात, सेवक में भी कैसा समर्पण भाव होता। तो जब राजा को परोसने लगा, उसके हाथ में दाल का कटोरा था, वो कटोरी में डालने लगा, थोड़े से छींटे उस राजा के कपड़ों पर गिरे, राजा को बहुत गुस्सा आता और वो समझ गया कि अभी तो राजा मुझे शिक्षा जरूर देगा, अब क्या करें। लेकिन उसका भी उनके प्रति जो समर्पण भाव, उसने पूरा कटोरा ही उनके कपड़े पर डाल दिया। तो राजा उसको देखता रहा और बोला, आपने ऐसा क्यों कहा, क्यों किया? तो उसने कहा, महाराज आप राज दरबार में मेरी सजा के लिए आप अनाउंस करते थे, एक छोटे से छीटे से इन्होंने इनको इतनी बड़ी सजा दी, तो आपका नाम बदनाम होता था। तो आपका नाम बदनाम न हो उसके लिए मैंने यह काम किया। उसको बहुत उसका समर्पण भाव देख करके खुशी हुई और उसको सजा से मुक्त किया। तो मेरा कहने का भाव यही है कि आप उस परम सत्ता परम ज्योति महाशक्ति के साथ अगर जुड़े रहेंगे, समर्पण भाव सच्चे दिल से, अगर कुछ कम ज्यादा भी हो जाए तो उसको आप संभालेंगे और उस परमात्मा के दिव्य शक्ति से आपका जीवन दिव्य गुणों से, दिव्य शक्तियों से, समृद्धि से, और आज जो हम चाहते हैं सशक्त रूप से, आज सोशल समाज सेवा के साथ आप कार्यरत रहेंगे। शुभकामनाएं देने के लिए मैं अभी आमंत्रित करना चाहती हूँ, जो अपने संक्षिप्त शब्दों के साथ देंगे, क्योंकि अगला वक्ता जिनका हम सुनने के लिए अभी तक इंतजार में हैं। तो हमारे राजेंद्र भाई जी सांगोले, आप भी एग्जीक्यूटिव मेंबर सोशल सर्विस विंग के हैं। आप सोशल सर्विस विंग के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं, आप मुंबई के प्रख्यात बिल्डर भी हैं और खुश मिजाज व्यक्तित्व है और आप समाज सेवक भी हैं। तो आपके साथ हम क्या कहें, हंसराज दामोदर ट्रस्ट मुंबई के भी आप मेंबर से, तो आप अपने शब्दों के वक्तव्य से हम सबको लाभान्वित करेंगे। आदरणीय भ्राता राजेंद्र जी संबोले।
अभी दीदी ने बोला, जैसे कि हम बिल्डर हैं मुंबई के मलबार हिल के, चैलेंजेस तो बहुत आते हैं, लेकिन ये ज्ञान में आने के कारण चैलेंजेस एकदम हल्के हो जाते हैं, कोई चैलेंज लगता नहीं है, अपने आप सब काम होता है। वैसे ज्ञान में आने के पहले हम बहुत गुस्से वाले थे, कोई हमें बाजू से धक्का भी देके जावे ना, तो 2 किलोमीटर जाके उसको मारने के से हमारे दिमाग में होता नहीं, उसको मारू उसके बाद देखू। तो कभी कभी क्या होता है, उनको मारने से हमको भी मार खाना पड़ता था कि हमने 4 दिया 4 हमको दे, कभी हमसे भी ताकतवर कोई होता तो हमको दे देता था। वैसे ज्ञान में आने के कारण मैं रात को 8 बजे के बाद मोबाइल बंद कर देता हूं। अभी इतना बड़ा कारोबार है तो लोग बोलेंगे, भाई मोबाइल क्यों बंद कर देते हो? क्योंकि 8 बजे के बाद हैप्पी आवर चालू होता है, जो बड़े बड़े होटलों में होता है ना, कि सब खान पान पे कोई डिस्काउंट मिलता है। इसके कारण मेरे दोस्त कम हो गए, क्योंकि सब देखते कि भाई ये कभी मिलता है तो बोलता है आपको 3 बाप है, लौकिक अलौकिक पारलौकिक है, बोलते अभी ये बाबा बन गया, अभी इसे लंबा रहो। तो दोस्त कम हो गए लेकिन आध्यात्मिक दोस्त बढ़ गए। वैसे हमारी ट्रस्ट है हंसराज दामोदर चैरिटेबल ट्रस्ट, हम हॉस्पिटल और बच्चों में, स्कूल के बच्चों में काम करते हैं। मैंने अभी जब अपना कोरोना आ गया तभी हमारा नासिक में मिलिट्री एरिया है, कंटेनमेंट बोर्ड बोलते हैं उसको, तो वहां के कैप्टन का फोन आया ब्रिगेडियर का कि अरे राजेंद्र भाई आप किधर है। बोले भाई साहब क्या हुआ, हमारा तो कोई दूसरा काम नहीं है। तो बोले हमें ऑक्सीजन प्लांट चाहिए क्योंकि हमारे पास ऑर्डर आएगी लेकिन वो फाइल में 6-8 महीना घूमेगी, आप क्या कर सकते हो। देखो बाबा की टचिंग थी, मैं निकला, हमारे जो एमपी थे स्टैंडिंग उनके घर गया तो वो मेरे को उठ के बोलता है भाई तू क्यों आया, मेरे पास कोई बेड बीड नहीं है अभी, ऑक्सीजन बेड किसी को चाहिए तो। बोलो भाई साहब मेरे को ऑक्सीजन बेड देना है मेरे ट्रस्ट के वजह से। उनकी हमने गाड़ी निकाली क्योंकि वीआईपी गाड़ी थी, रस्ते में किसी को आने जाने नहीं देते थे। हम भरूच गए तो वहां बड़ी लाइन लगी थी एमएलए एमपी की सबकी, सबको ऑक्सीजन प्लांट देना था। देखो बाबा का ज्ञान कितना काम करता है, वो सिक्योरिटी था उसको बोला ओम शांति भाई आप कैसे हो, जरा वॉशरूम की तरह बताओ ना जरा, कि मेरे को अंदर जाना था, अंदर जाओ तो मैं आगे का काम बता दूं। वो ओम शांति सुन के मेरे को डायरेक्ट मैनेजर के पास लेके गया, बोले आप ब्रह्म कुमारी वाले हो, आप सेवा के लिए आए हो, चलो। तो गए हमारे एमपी साहब ने बोला कि भाई हमको मिलिट्री वालों को ऑक्सीजन, क्योंकि मिलिट्री वाले भी इंसान है, वो हमारी सेवा करते हैं तो हमें भी उनकी सेवा करनी है। तो हम लोग गए उधर, बोला भाई ऐसा है वैसा है थोड़ा, वो बोले भाई वेटिंग लिस्ट है। मैं बोला भाई तू कुछ भी कर, डबल पैसा ले लेकिन मेरे को ऑक्सीजन प्लांट अभी चाहिए, मैं अभी तेरे को पैसा तेरे अकाउंट में डालता हूं। वो भाई बोला नहीं मेरी एक बहन भी है ना वो ब्रह्म कुमारी में है, मैं आपका काम करूंगा आप बेफिक्र रहिए। 15 दिन में हमने ऑक्सीजन प्लांट बिठा के दिया। आज ये सब बाबा की टचिंग के हिसाब से कि बाबा कार्य करा लेता है, करा लेता है। तो हम वहां पहुंचे 15 दिन के बाद एमएससीबी वाले जो थे उनको बोल के सब करके और हमने ऑक्सीजन, आज कंटेनमेंट बोर्ड देवलाली में 80 लोग एट ए टाइम 365 डेज ऑक्सीजन फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। ये खाली बाबा के कारण हुआ। वैसे हम बच्चों की सेवा करते हैं स्कूलों में जाके। देखो गरीब कभी किसी को मत बोलो, ये गाली होती है, जरूर मत बोलो। गरीब बोलने से आदमी को क्या है कि ऐसा लगता है यार मेरे को सब गरीब गरीब बोलने, जरूर मत है तू भाई गरीब नहीं। तो एक स्कूल में हम गए, वो जो 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम होता है तो सेंड ऑफ होता है, तो सेंड ऑफ में गए, हमारी बहने को लेके जाता हूं मैं, मेरे को शौक है बहनों को लेके जाके बच्चों में ज्ञान देना। तो वहां गया तो ऐसे बैठे बैठे थे तो जरूरमंद थे, तो एक लड़का था तो उसने अपने पापा का शर्ट पहन के आया था और चप्पल में तो इसने सिलाई थी। मैं देख के हैरान हुआ, बोले बच्चा 10वीं में एग्जाम कैसा देगा। तो मैं बोला बच्चे तू इधर आ जा तेरा क्या है मैं देख लेता हूं। मैं उसको लेके गया, कपड़ा उपड़ा दिलाया और बाद में 10वीं की एग्जाम हो गई तो मैं गया मिलने को, बोला कितना मार्क मिला है देखे। तो वो शक्कर लेके आया था पूरी में कि उसके पास पैसा नहीं, गरीब का लड़का मतलब जरूरमंद का लड़का। मैं बोला बेटा कैसा है, तो वो लड़का वो एरिया में फर्स्ट आया, वो तालुका में से फर्स्ट आया और 100% रिजल्ट लगा क्योंकि ब्रह्म कुमारी ने उनको बोलता था कि भाई तुम बाबा के बच्चे टेंशन मत लो, शांति से जाओ, हल्के होके जाओ। हम तो खाली राइटिंग पैड बांटते थे लोगों को। वो गया बाद में, वो बच्चा मेरे को 7-8 साल के बाद मिला तो तहसीलदार बना था। तो बोला अरे तू क्या कर रहा है, तो बोला कुछ नहीं मैं तब से मेरे साल का 12 महीने का पगार होता है उसमें से 1 महीने का पगार जो 60-70 हजार होता है वो मैं हर दिवाली में जाके, मैं घर में दिवाली नहीं करता है, जो जरूरतमंद है गरजुए उनको बांटता हूं, उनको कपड़े बांटता हूं। देखो ये बाबा के ज्ञान का कहा के कहा, आज जो बाबा का प्योर बच्चा है किसी का 1 रुपया लेता नहीं है, जहां भी ट्रांसफर करो करो मैं जाने को तैयार हूं। और दूसरा 2 मिनट लो, 2 मिनट और लेता हूं। वैसे कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, हम ज्ञान देने के लिए एक कंपनी में जाए डॉक्टर सचिन पर अब सबको मालूम है, तो हम लोग 300 लोग को ट्रेनिंग देने जा रहे थे तो गाड़ी एक ट्रक हमारे पे आके गिर गया। मेरा इनोवा गाड़ी था टॉप मोस्ट टॉप मॉडल का, तो गाड़ी तो 80% तो ब्रेक बाजू का व्हील उड़ गया, मेरे को भी कुछ लगा था। लेकिन हमें सिखाया है समय को, बाबा को याद करना, मैंने शिव बाबा बोला क्या करना। और मेरा एक हैबिट था कि जो बॉनेट होता है ना आगे ड्राइवर की तरफ, तो मैं बाबा का झंडा रखता था तो मेरा ड्राइवर बैठा था तो स्टेयरिंग उसके इसमें घुस गई तो उसका मोबाइल बेंड हो गया। मैं उसके पीछे था, मेरे को भी लगा कुछ, और किसी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाबा की ताकत लेके मैं दरवाजा तोड़ के बाहर आ गया। जब आया तो मेरे को लगा कुछ तो भूल हुआ है, जो अपने इधर का बॉल होता है उड़ गया था। बोला अभी मैं रोज, मेरे को चक्कर भी आ रहा था, लेकिन बाबा की याद में मैंने सन किया। बोला चलो, एम्बुलेंस बुलाया, मुंबई चले गए। मैं मुंबई गए तो हमारी बहन है अभी भी, वंदना दीदी, वहां सेंटर से मैं बिलोंग्स करता हूँ, वो मेरे पहले उधर पहुंच गए। वैसा मैं बहुत डरता हूँ, लेकिन इंजेक्शन डॉक्टर हॉस्पिटल से मैं डरता हूँ। मैं बोला कर नहीं बाबा, उधर मैं स्कूल में भी भाग जाता था, इंजेक्शन देना है तो भाग जाता था। तो गए उधर, एडमिट किया, और सब ने बोला कि अभी 2-3 साल के लिए अभी ये पंगा लेके घूमेगा। लेकिन बाबा की कृपा, बाबा का प्यार, क्योंकि मैं रोज अमृत वेले करता हूँ, सुबह 4 से 5:15, 18 जनवरी को ब्रह्म बाबा का दिन होता है, पांडव भवन में आता ही आता हूँ, अभी तक मैंने मिस नहीं किया है। हाँ, बीमार हुआ तभी मिस हुआ था, वही शक्ति मेरे काम आ गई। जब मेरे को लिया तो डॉक्टर सचिन अर्चित थे, टॉप मोस्ट डॉक्टर है, वो सैटरडे को कभी किसी का भी ऑपरेशन नहीं करते थे, लेकिन बोला नहीं मेरे को तेरा ऑपरेशन सैटरडे को करना है। देखो, मेरे को 2 साल का छुट्टी मिलने वाला था, मैं 4 महीने में अच्छा हुआ। मैं ट्रेन से कभी कभी जाता हूँ, तो मैंने मार्च को मेरा एक्सीडेंट हुआ, ऑपरेशन हुआ, 7 जुलाई आज भी याद है, मैंने फर्स्ट क्लास का पास निकाल के मैं मुंबई चला गया। देखो, 4 महीने में बाबा मेरे को ठीक कर दिया। दूसरा, बाद में मैं 25 अगस्त को इधर भी आ गया, माउंट आबू में प्रकाश मणि दादी का दिन होता है, तो बाबा ने कितना देखो मेरे को सकाश दी। हम बोलते हैं हमें टाइम नहीं, अरे टाइम निकालो तो टाइम मिलेगा, टाइम नहीं निकालो तो कुछ नहीं मिलेगा, कमाना 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 रहेगा, बाकी कुछ होता नहीं है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। कहा जाता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आप कहेंगे राजयोग क्या एक चमत्कार करता है, तो आपके जीवन के बहुत सारे चमत्कार, बहुत प्रैक्टिकल के अनुभव आप सबको सुनाकर, हम सबको सुनाकर आपने बहुत अच्छी हम सबको एक प्रेरणा ही दी। तो आपके लिए और उनके मन का मनोगत तो यही रहा, सूरज की तरह से चमको तुम, सूरज की तरह से चमको तुम, चांद की तरह से खिलो तुम, फूलों की तरह से महको तुम, बहारों की तरह से झूलो तुम, हमारी भी एक तमन्ना है। भाई जी की तरफ से मैं आपको कहूंगी कि हमारी भी एक तमन्ना है, शिव बाबा को कभी न भूलो तुम, शिव बाबा को कभी न भूलो तुम। तो जोरदार तालियां हमारे भाई जी के लिए। अभी जिस इंतजार में हम सभी बैठे हुए थे, हमारी अति प्यारी, अति स्नेही, परम श्रद्धेय, आदरणीय हमारी प्यारी शीलू दीदी जी, आप मुख्यालय जहाँ पर आपका जो पांडव भवन है, जहाँ आप कार्यरत है, और बचपन से लेकर आपको हम देख ही रहे, बहुत ही सुंदर व्यक्तिमत्व के साथ आपकी जीवा पर उस परमपिता परमात्मा शिव ने एक सरस्वती का वरदान दिया। शुरू में जितनी भी सेवाएं शुरू हुई हम सब देख रहे, 73-74 से लेकर इस विद्यालय के साथ हम जुड़े हैं, तो कितनी लोगों के जीवन में और हम सभी ऐसी बहनों में आपके जीवन के द्वारा बहुत ही प्रेरणाएं मिली। तो आपके परिचय में मैं क्या कहूँ, सूरज को हथेली दिखाने से भी सूरज के किरणों को हम रोक नहीं सकते, इसी तरह से आपके जीवन का व्यक्तिमत्व कितने भी शब्दों से अगर हम वर्णन करें तो पूरी नहीं हो सकती। माँ सरस्वती का आपको वरदान। फिर भी संक्षिप्त में मैं कहूंगी, आप वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक, एकेडमी फॉर बेटर वर्ल्ड ज्ञान सरोवर, निर्देशिका राजयोग शिविर माउंट आबू, टीवी चैनल में प्रवक्ता, महासम्मेलन वक्ता तथा अनुवादक, मुख्यालय संयोजिका, शिक्षा प्रभाग, राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन माउंट आबू, पांचों ही महाद्वीपों में आप 70 से अधिक देशों में भ्रमण, ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी, आप हम सबके समक्ष है, तो आपके लिए दिल ये कहता है मधुबन के आप शान हो, मधुबन के आप शाम हो, देवियों में आप वही महान हो, दिव्य गुणों की आप खान हो, ब्राह्मण परिवार की आप जान हो, ब्राह्मण परिवार की आप जान हो। तो हमारी अति प्यारी देवी जी से हम सुनेंगे, जिसके लिए हम कहते दूध में चावल मिले उसे खीर कहते हैं, आप जैसी दीदी मिले उसे तकदीर कहते हैं, उसे तकदीर कहते हैं। तो सुनेंगे हमारी परम श्रद्धेय आदरणीय सीलो दीदी जी से।
ओम शांति। आप सबसे निवेदन है कि आप भी साथ देंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सम्माननीय मंच तथा सर्व समाज से भी भाई बहने, बहुत सुंदर इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ और आज यह अब समाप्ति समारोह है। समृद्ध एवं सशक्त समाज की कुंजी आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता क्या है, हमारे कई वक्ताओं ने बहुत सुंदर सुंदर उनके आप व्याख्यान किया, मैं उसमें नहीं जाऊंगी, लेकिन जो अभी का विषय है समाज सेवम एवं समर्पण भाव। समाज सेवा समर्पण भाव के बिना नहीं हो सकती है। समर्पण चाहे समाज के प्रति हो, चाहे ईश्वर के प्रति हो, समर्पण भाव एक बहुत ऊंचा गुण है। परमात्मा के प्रति समर्पण होना यह एक बहुत बड़ी शक्ति है। आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में देखते हैं, यहां सबके अंदर वो समर्पण भाव है, क्योंकि उसके बिना सेवा नहीं हो सकती है। आप किसी से भी पूछेंगे कि आप ये जो भी कर रहे हो सेवा, ये किसकी सेवा कर रहे हो, तो यही कहेंगे हम तो भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो यहां कोई भी प्रकार की सेवा वो ईश्वर की सेवा है। आप सब अतिथि रूप में आए हैं, तो अतिथियों की भी सेवा ये ईश्वरीय सेवा है और हर कार्य सेवा है, चाहे कोई भाषण करे, चाहे कोई बर्तन मांजे। हम यही कहते हैं कि भाषण और बासण दोनों ही सेवा है, क्योंकि ये ईश्वरीय कार्य है। हम ये नहीं कहते हैं कि केवल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है। डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही, किसको कोई कार्य मिला है, किसी को कोई कार्य मिला है, लेकिन केवल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क नहीं है, परंतु एवरी टास्क इज अ डिग्निटी। हर कार्य जो भी सेवा की है का है वो महान है। ये पांच उंगलियां, उनमें एक भी उंगली समान नहीं है, लेकिन जब इनको मिलाया जाता है तो ये सब समान बन जाती है, और समान बनने के कारण वो मुट्ठी कितनी मजबूत हो जाती है। आप यहां देखेंगे कि हर एक के अंदर सहयोग की भावना है, हर एक के अंदर मैं भी कुछ करूं, मैं भी कुछ करूं, देने की भावना है। और हम यही कहते हैं कि जो देता है वही देवता है, देता है वही देवता है। तो क्या देना है हमें? केवल स्थूल चीजें देना यही समाज सेवा नहीं है। हाँ, जरूर है कि किसी आवश्यक कोई जरूरतमंद को हम उनके लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो देते हैं, वो समाज सेवा है जरूर। लेकिन सबसे ऊंची सेवा तो गुणों की सेवा है। दान तो कई प्रकार का दिया जाता है, अन्न दान, वस्त्र दान, भूदान, रक्त दान, नेत्र दान, और समाज से भी संस्थाएं ये सब दान करती है। लेकिन ये जो भी हम दान करते हैं उसमें दो बातें जरूर ध्यान पर रखनी होती है। एक बात तो हम अभिमानवश दान न करें, एक कंपटीशन में आकर के दान न करें। कोई मंदिर निर्माण के लिए धन इकट्ठा किया जाता है और एक सूची बनती है कि किसने कितना दान किया, लेकिन जिसको अपना अभिमान होगा वो सोचेगा मेरा नाम सबसे ऊपर आना चाहिए ताकि मैं सबसे बड़ा दानवीर कहलाऊं, और उसका उसको अभिमान होगा। लेकिन दान की जहां बात आती है, कहा जाता है कि अगर आपका दायां हाथ दान करता है तो बाएं को पता भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि गुप्त दान महाकल्याण। तो जो भी हम दान करते हैं वो इतना गुप्त हो, दिखावा न हो, अभिमानवश न हो, तब वो दान फलीभूत होता है, तब वो दान महादान कहा जाता है। और फिर दान करने के बाद वर्णन नहीं, हम वर्णन बहुत कर लेते हैं, मैंने इतना दान किया, मैंने इतना दान किया। आप देख रही हैं यहाँ ये कैसे विश्वविद्यालय चलता है, यहाँ कोई दान पात्र नहीं है। हम यहाँ ये नहीं कहते कि हम यहाँ दान करते हैं, हर एक अपनी यथा योग यथा शक्ति सेवा करता है, चाहे वो तन से सेवा करे, चाहे मन से सेवा करे, चाहे धन से सेवा करे, चाहे समय से सेवा करे, चाहे अपने श्वास से सेवा करे, चाहे अपनी शक्ति से सेवा करे, अपने गुणों से सेवा करे, वो सब सेवा कहलाता है। और वो सेवा का कोई नाम नहीं है। आप कई अन्य स्थानों पर जाएंगे, वहां एक चप्पे चप्पे पर लिखा रहता है कि ये जो ईंट है ये फलाने ने दान की, ये फलाने ने दान किया, यहाँ ये कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि कोई मंदिर बनाता है, कोई मूर्ति के लिए धन दान करता है, तो उस मूर्ति के नीचे भी लिखा रहता है कि ये मूर्ति फलाने ने इतना धन देकर दान में दी। तो उस मूर्ति के नीचे भी उस व्यक्ति का नाम होता है, जैसे कि उसकी मूर्ति हो, मूर्ति तो राधे कृष्ण की होगी या लक्ष्मी नारायण की होगी या राम सीता की होगी, कोई भी देवता की होगी, लेकिन उसका अपना नाम होगा। और यहाँ आप देखेंगे कहीं भी किसी का नाम नहीं है, क्योंकि कहा जाता है गुप्त दान महाकल्याण। और फिर नेकी कर दरिया में डाल, ये भी एक बहुत सुंदर कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। तो समाज सेवियों का तो यही कर्तव्य है कि नेकी कर दरिया में डाल, वर्णन नहीं, कोई अच्छा कार्य करते हैं तो वर्णन करने की जरूरत नहीं है, कोई गलत कार्य करते हैं तो वो सच जरूर बताना चाहिए। लेकिन दुनिया में हम उल्टा देखते हैं, कोई अच्छा कार्य करते हैं तो कितना प्रचार करते हैं उसका, और कोई गलत कार्य करते हैं तो छिपाते हैं। होना चाहिए इसके विपरीत, तब वो दान महादान कहलाता है। और दूसरा कि जो वास्तव में आवश्यक हो, जिसको जरूरतमंद हो, उनको देना। जरूरतमंद नहीं है तो वो दान भी निष्फल जाता है, और पात्र हो उसको दान देना। अगर वो कुपात्र है, वो दान के योग्य नहीं है, तो वो दान भी व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए दान भी कैसे करना है, कहाँ करना है, किसको करना है, और उसमें अपनी मनस्थिति कैसी बनानी है, ये सब वास्तव में आध्यात्मिकता में आता है। ये भी आध्यात्मिकता है, तो समाज सेवा भी एक आध्यात्मिकता का ही अंग है। और जब हम उस रूप में देखते हैं तो हम अपनापन, अभिमानपन ये समाप्त कर देते हैं। और जब हमें ये धारणा है कि मैं तो ईश्वर को समर्पित हूँ, तो ये तन भी उनका है, मन भी उनका है, धन भी उनका है, मेरा क्या। आरती में तो हम यही गाते हैं ना, ये तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो अगर हम कुछ दान भी करते हैं, ये किसका दिया हुआ है, ये भगवान का दिया हुआ है। तो भगवान का दिया हुआ है, हम भगवान के बच्चों को दे रहे हैं। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो, ये गीत तो बहुत प्रसिद्ध है। तो जो हम दान करते हैं, ये कभी न सोचो कि हमें कोई रिटर्न मिलेगा या नहीं, बहुत मिलेगा, अवश्य मिलेगा। नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन फल जरूर मिलेगा। इसलिए गीता के अंदर बहुत सुंदर महावाक्य है, कर्मणे वाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर तुम्हारा पूरा अधिकार है, सही कर्म करते जाओ, जा पर फल की इच्छा मत रखो। ये हमें सिखाया जाता है यहाँ। कई प्रकार का हम फल चाहते हैं, मान के रूप में, नाम के रूप में, शान के रूप में, महिमा के रूप में, बहुत कुछ चाहते हैं। लेकिन यहाँ हमें सिखाया जाता है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, जो है वो हमें देना है। और सबसे बड़ा दान तो गुणों का दान है। सबसे बड़ा जो हम वातावरण में वाइब्रेशंस की बात कही हमारे पूर्व वक्ता ने, तो वो वाइब्रेशंस हमारे श्रेष्ठ संकल्पों के हो, ये कितना बड़ा दान है। समाज को हम अगर श्रेष्ठ संकल्पों का भी दान करते हैं तो भी समाज का उत्थान हो जाता है। हमारे श्रेष्ठ बोल का भी दान हो, हमारे श्रेष्ठ कर्म का भी दान हो, हमारे एक एक गुण का दान हो, तो यहाँ हम कहते हैं कि 3 प्रकार का बहुत बड़ा दान है। केवल धन दान ही सब कुछ नहीं है। एक है मनसा दान, दूसरा है वाचा दान, और तीसरा है कर्मणा दान। तो मनसा से शक्ति का दान दो, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखो, किसी के प्रति भी दुर्भावना न रखो। मुख द्वारा वाचा दान, इस मुख से केवल ज्ञान निकले, इस मुख से कोई और अपशब्द न निकले, क्योंकि जो हम मुख से बोलते हैं वो वाइब्रेशंस बन जाते हैं वातावरण में। तो हमारे मुख से कौन से शब्द निकले, हमारे हाथों से कौन से कर्म हो, ये हाथ किसी को मारने के लिए नहीं है, ये हाथ वरदान के हाथ हो। आप देवताओं के हाथ में देखेंगे, ये वरदान का हाथ है, देवियों के हाथ वरदानी हाथ है, दाता के हाथ है, तो वरदान का हाथ है, आशीर्वाद का हाथ है, तो वरदान का हाथ ऐसे होगा, आशीर्वाद का हाथ ऐसे होगा, और लक्ष्मी जी का हाथ कैसे दिखाते हैं, अशरफिया निकल रही है ऐसे। तो वास्तव में हम उस दाता के बच्चे बन, मास्टर दाता बने, और मास्टर दाता बन के बड़ा दिल रख कर के सच्चा दान हम करें, और हम समाज की सेवा अपने चरित्र से करें, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। इसीलिए कहा जाता है धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया, पर चरित्र गया तो सब कुछ गया। और हम कहते हैं चरित्र गया तो सब कुछ गया, एक जन्म के लिए नहीं, लेकिन जन्म जन्म के लिए गया, क्योंकि वो चरित्र गया तो वो आत्मा पर दाग लग जाता है। धन गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो हाथों की मैल है। स्वास्थ्य गया तो वो कुछ गया जरूर, क्योंकि स्वास्थ्य एक बार बिगड़ता है तो वो जल्दी वापस नहीं आता है, लेकिन चरित्र गया वो आत्मा पर घाव कर लेता है, आत्मा पर दाग लग जाता है, और जो आत्मा पर दाग लगा वो तो जन्म जन्म चलेगा। इसलिए जैसे प्रेम भाई ने कहा कि आप लोग क्या सेवा करते हो, लोग पूछते हैं हमसे, तो ये सबसे बड़ी सेवा चरित्र की सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है योगदान देना, समाज के अंदर एक पवित्रता का दान देना, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस का दान देना, वाणी द्वारा श्रेष्ठ बोल का दान देना, परोपकार की सच्ची भावना रखना, पर चिंतन से परे रहना, पर निंदा पर ग्लानी इन बातों से परे रहना। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि अनेक पर इस दुनिया में है, वो सब पर काट दो, पर एक पर जरूर रखो, तब सच्चे समाज सेवी बन जाएंगे। कौन से पर है दुनिया में, पर ग्लानी, पर निंदा, पर चिंतन, पर ये मन में दूसरों के प्रति बुरी भावना, बुरा विचार, बुरा चिंतन, बुरा बोल, न जाने क्या क्या मुख से निकल आता है, क्या क्या सोच लेते हैं, दूसरे का बदला लेना, कहा ना फॉरगिव एंड फॉरगेट, वो हमें अगर नहीं आता है बदला लेने की भावना होगी तो हम समाज की क्या सेवा कर सकेंगे। तो इसलिए यहाँ यही कहा जाता है बदला न लो, बदल कर दिखाओ, हमें बदलना है। तो जब हम बदल जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम समाज को अवश्य बदलेंगे, और ये समाज जरूर बदलेगा, आप सबका उसमें सहयोग है, वैसे भी आप इतना सहयोग देते हैं, ये और सहयोग हो जाएगा तो ये समाज बदल कर एक दिन सतयुग बन जाएगा। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य है जिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हो रहा है, आप सब भी इसमें सम्मिलित होंगे। और जैसे बताया हमारे पूर्व वक्ता ने पिछले सेशन में, एक आना देकर जाना है, तो एक आना के साथ कई हमसे पूछते हैं आपकी फीस क्या है, आपकी फीस क्या है यहाँ की, क्योंकि यूनिवर्सिटी हम कहते हैं विश्वविद्यालय है, तो यहाँ की फीस है 5 खोटे पैसे। आप फीस ये देने के लिए तैयार हैं? 5 खोटे पैसे। कौन से खोटे पैसे, समझ गए ना आप, कौन से खोटे पैसे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यही खोटे पैसे भगवान हमसे मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते हैं, बाकी जो है वो समाज के लिए, भगवान को नहीं चाहिए। लेकिन भगवान हमसे ये 5 खोटे पैसे मांगते हैं, ये देके जाओ और एक आना लेकर जाओ, यही यहाँ से आप ये श्रेष्ठ कार्य करने का जो की जो प्रेरणा है वो लेके जाएंगे। तो पर सारे हटा दो, एक पर लेके जाओ और वो पर है परोपकार। करो परोपकार तो आपका भला और सर्व का भला हो जाएगा और सबकी दुआएं आपको मिलेगी। ये दुआएं ही बहुत बड़ी पूंजी है जो आत्मा अपने साथ ले जाएगी। तो ये जीवन भी सफल तो जन्म जन्म आपके सफल हो जाएं, यही हमारी शुभकामना शुभ भावना आप सबके लिए है। ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर एजुकेशन के साथ आपने अपना वक्तव्य हम सबके समक्ष रखा, क्योंकि आपकी विशेषता ही है कि आप वाइस चेयर पर्सन एजुकेशन विंग के। तो जोरदार तालियां हमारी दीदी जी ने हम सबको बहुत ही सुंदर शब्द के साथ, सुसंस्कार और संस्कृति के साथ लाभान्वित किया। अभी कुछ ही पल बाकी है, क्योंकि इसके बाद 9 बजे हमारे बीच हमारे सम्माननीय आदरणीय सूरज भाई जी होंगे। और आप सबको नम्र निवेदन है कि जिनको भी कुछ प्रश्न देना है वो अभी भी आकर आप हमको क्या कर सकते दे सकते, ताकि आपके प्रश्न के उत्तर उसी के साथ आपको दिए जाएंगे। भोजन के साथ आप तुरंत आएंगे। तो इतनी बड़ी महाहस्ती जो आज लोग दूर दूर से आते हैं, तो आप उस तपस्वी महायोगियों के आज जो आप बोल सुनेंगे उनके आशीर्वचन से ही आपका जीवन बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ बनेगा। 1 मिनट के लिए आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। जो हमारी दीदी जी ने बहुत सुंदर शक्तिशाली आप सबको संकल्प दिए और 1 मिनट के मेडिटेशन के साथ आज का ये जो है हमारा समापन सत्र पूर्ण करेंगे। तो आप अपने आप में एक संकल्प करें कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। बोलो, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं सदा शांत और स्थिर हूँ। मैं निडर हूँ। मैं खुश मिजाज आत्मा हूँ। मेरा शरीर और मेरा मन संपूर्ण स्वस्थ है। मैं सबको स्वीकार करता हूँ। मुझे सब स्वीकार करते हैं। मेरे साथ सबके रिश्ते अच्छे हैं। सफलता मेरे लिए निश्चित है और परमात्मा की शक्तियां चारों तरफ है। ये दुआएं सुरक्षा का कवच है। परमात्म शक्तियां मेरे चारों तरफ है। यही दुआ और शक्तियां मेरा कवच है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के समापन सत्र को हम समाप्त करते हैं। मंचासीन सभी का हम धन्यवाद। और आप इस समय तक बैठकर इतनी सेवाएं दी, आज बहुत शांति से सुना, इसलिए आपको भी धन्यवाद।